أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد. ناظرین، آج رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ اخلاقی موضوعات پر ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے کچھ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کی وابستگیاں، اس کے تعلقات، اس کے راہ کی زنجیریں بن جاتے ہیں. انسان جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اس سفر میں اس کا مال اس کے رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کے بال بچے اس کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کا مقام اور اس کا منصب اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کی دوستیاں اس کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ موت سے سب بھاگتے ہیں، اس لیے کہ موت سے بھاگنے کی وجہ دنیا سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کا ٹوٹنا ہے، اور وابستگی دنیا سے اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان وابستگیوں کو توڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. لیکن جب ہم ان وابستگیوں کو توڑ دیتے ہیں تو خود بخود ہم آزاد ہونے لگتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پر آپ نے زنجیریں ڈال دی ہوں. ان زنجیروں کی مختلف کڑیاں ہوتی ہیں. ان کڑیوں کو، زنجیروں کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں، اس وقت تک وہ پرندہ آزادی کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا. رمضان المبارک ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. رمضان المبارک میں یہ جو بھوک ہم برداشت کرتے ہیں انہی زنجیروں کو توڑنے کے حوالے سے ہے. اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچنا چاہے جس مقام کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور فرمایا ہے لعلکم تتقون، متقین کی صف میں انسان داخل ہو جائے، گویا رمضان المبارک کے روزوں کا اور ان شب و روز اور ایام کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل کو متقین کی منزل کہا گیا ہے. متقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے حب کا جو بھی ذریعہ ہے اس ذریعے کو توڑنا لازم ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں چاہے تم خود بھوکے رہو، دوسروں کو افطار کرواؤ. اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں چاہے تمہیں کوئی بھی مشکل ہو، دوسروں کی مشکلات کو دور کرو، اپنی مشکلات کو نظر انداز کر دو. اس لیے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں چاہے تم کسی بھوکے روزہ دار کو ایک کھجور اور ایک خورما کے ذریعے سے افطار کروا دو، یا ولو بشربت من الماء، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا افطار کرا دو، وہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب رکھتا ہے. اس لیے کہ آپ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنی خواہش کو دباتے ہیں، اپنی آرزو اور خواہش کو دبانے کے بعد دوسروں کی خواہش اور دوسروں کی آرزو کو پورا کرتے ہیں. رمضان المبارک میں الصوم لی کے عنوان سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. پابندی نہ ہونے کے باوجود، فریج میں تمام کھانے پینے کی اشیاء کی موجودگی کے باوجود، تمام تر چیزوں کے آپ کے دسترس میں ہونے کے باوجود، آپ گرمی کے طویل ترین ایام میں روزہ رکھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے اجتناب کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں لیکن اپنے لب ठंडे पानी से तर नहीं करते, भूख की शिद्दत को महसूस करते हैं लेकिन उसके बावजूद एक लुकमा अपने मुंह में नहीं डालते। क्यों? इसलिए कि आपका ईमान कवी होता है और आपका ईमान आपसे कह रहा होता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो रोजा रोजा नहीं रहेगा। यही विल, यही इरादा, इरादे की ये मजबूती, ये इस्तेहकाम और इसी तरह की कैफियत इंसान की जिंदगी के बाकी उमूर में भी नजर आनी चाहिए। जब इंसान अपने किसी मोमिन भाई के बारे में सोचता है तब भी यही कैफियत उसकी होनी चाहिए, जब इंसान किसी से मामला करता है तब भी यही कैफियत उसकी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा काम ना हो जिससे रोजे का तकद्दस खराब हो। जब इंसान बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ बैठता है तो तब भी ये चीज उसके पेश नजर रहे कि कहीं रमजान मुबारक का तकद्दस खराब न हो और वो वसवसों का शिकार न हो। सूरह मोमिनीन की आयत है, कुल रब अऊज़ु बिका मिन हमज़ात शयातीन। ऐ नबी कह दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगता हूं मिन हमज़ात शयातीन, शयातीन के पैदा किए हुए वसवसों से। वसवसा इंसान की फिक्र को मुतासिर करता है, इंसान की रूह को मुतासिर करता है, उसके अंदर की बातिनी दुनिया को मुतासिर करता है और इसी वसवसे की वजह से इंसान फिर राह रास्त से हट जाता है। जो लोग रोजा नहीं रखते या जो लोग रोजा रखते हैं और जबान का रोजा सिर्फ रखते हैं, दिल का रोजा नहीं रखते, पेट का रोजा रखते हैं लेकिन ख्यालों का रोजा नहीं रखते, अफकार का रोजा नहीं रखते, निगाहों का रोजा नहीं रखते, आजा और जवारिह का रोजा नहीं रखते, उनकी मुश्किल यही है कि वो अपने आप को वसवसों की जंजीरों से आजाद नहीं कर पाए। अऊज़ु बिका मिन हमज़ात शयातीन, मैं शैतानों के वसवसों से या अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं। قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس, وسواس اور وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ۔ یہ جو وسوسہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ وسوسے بہت ہوتے ہیں۔ شیطان بھی وسوسے پیدا کرتا ہے, नफ्स के अंदर भी वसवसे पैदा होते हैं और उसके नतीजे में इंसान उस रास्ते को छोड़ देता है जो रास्ता उसके अल्लाह का है, उसके नबी का है और कुरान करीम का बताया हुआ रास्ता है। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी दुआ में नहजुल बलागा के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, यह फरमाया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक, बारिलाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, मिन सूइल मंजर, निगाह की बुराई से। जब निगाह किसी नामहरम पर पड़ती है तो वसवसे का पैदा होना उसका जवाब है, फितरी रद्दअमल है। आप जब दो हाथों को एक दूसरे से जोर से मारते हैं तो उसके नतीजे में आवाज पैदा होती है। जब आपकी निगाह किसी नामहरम के चेहरे से, उसकी जुल्फों से, उसके बदन से टकराती है तो वसवसों का पैदा होना बिल्कुल फितरी रद्दअमल है। इसलिए फरमाया कि मिन सूइल मंजर, दिखाई देने वाली चीजों के वसवसे से, बुराई से और सु से, उसकी नेगेटिविटी से। फिल अहल, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे उसका ताल्लुक माल से हो, चाहे उसका ताल्लुक औलाद से हो। बाज़ोकात आपने खुद भी अपने गिर्दोपेश में ये महसूस किया होगा कि एक छोटा सा दर्द महसूस होता है, किसी काम में नाकामी होती है, किसी चीज़ में परेशानी शुरू हो जाती है, तो बिलउमूम ख्वातीन फौरन जायशा निकलवाती हैं, किसी पीर के पास जाती हैं, किसी तावीज़ गंडे वाले के पास जाती हैं, फिर कहा जाता है कि भाई आप हमारा जायशा निकाल के देखें कि क्या कहीं किसी ने हमारे खिलाफ जादू तो नहीं किया, किसी ने हमारे खिलाफ टोने तो नहीं किए, किसी ने हमारे खिलाफ कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से हमें इन मैदानों में नाकामी हो रही है। ये क्या है? ये सब कुछ वसवसे हैं। इंसान के अंदर वसवसे की कुव्वत शायद बाकी तमाम कुव्वतों की नस्बत ज्यादा ताकतवर हो, और इसी वसवसे का फायदा शैतान उठाते हैं, इसी वसवसे का फायदा जाली पीर उठाते हैं, इसी वसवसे का फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्होंने सादलोह लोगों की सादलोही और बेवकूफी से फायदा उठाकर उनकी जेबें खाली करना होता है। फिर यही ख्वातीन मर्दों को बहलाती हैं, फुसलाती हैं कि भाई हमारे खिलाफ तावीज़ हो गया, हमारे खिलाफ गंडे हो गए, हमारे खिलाफ ये हो गया, हमारे खिलाफ वो हो गया, और उसके बाद जहां पर इसके तोड़ के पैसे दिए जाते हैं वहीं पर फिर अपने मुखालिफ को भी जेर करने के लिए, उसको तंग करने के लिए फिर उसी तावीज गंडे वाले के पास, उसी जाली पीर के पास, उसी जाली फकीर के पास जाया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, तवानाइयां खर्च की जाती हैं, जबकि सारी की सारी चीजें बातिल हैं और झूठ है और सिर्फ धोखा है। अमीरुल मोमिनीन की ये जो दुआ है वो दुआ इसी हवाले से है कि औज़ु बिक मिन सूइल मंजर, निगाह जो चीज देखती है, हर वो चीज जो निगाह देखती है उसके कुछ असरात इंसान की रूह पर, उसके दिल पर मुरतब होते हैं। लेकिन क्या इंसान को अल्लाह ने अकल की दौलत से नवाजा नहीं है? अगर अकल की दौलत से नवाजा है तो फिर मुझे चाहिए कि मैं अकल की रोशनी में फैसला करूं कि क्या ये चीज हकीकत रखती है या नहीं रखती, या मैं खामखा में वसवास और वसवसों का शिकार होने के बाद अपने किसी मोमिन भाई पर शक कर रहा हूं, उसके हवाले से सुएजन का शिकार हूं, उसके हवाले से बदगुमानियों का शिकार हूं। अक्सर जो माशरती खराबियां जन्म लेती हैं इन्हीं बदगुमानियों की वजह से जन्म लेती हैं, अक्सर जो नफरतें पैदा होती हैं इन्हीं बदगुमानियों की वजह से और वसवसों की वजह से पैदा होती हैं, अक्सर जो दुश्मनियां पैदा होती हैं लोगों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, कुलीग्स के दरमियान, वो इसी वसवसे की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूए जन से, बदगुमानी से मना किया है, हदीस में उसकी मुरम्मत आई है। इसलिए शैतानी वसवसों से पनाह मांगने की दरख्वास्त की गई है, हुक्म दिया गया है। ये जो मुबारक महीना है ये इन वसवसों से अपने आप को पाकीजा रखने और अपने आप को बचाने का महीना है, जहां पर आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी निगाहों को भी कंट्रोल में रखिए, जहां पर निगाहों को कंट्रोल में रखते हैं अपने ख्यालात को भी कंट्रोल में रखिए, अपना ज्यादा वक्त कुरान करीम और दुआओं में सर्व कीजिए, खुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि वसवसों से आपका दिल, आपका जहन, आपकी फिक्र आज़ाद हो रही है, और उसके नतीजे में आपके रोज़े माशाल्लाह पाकीज़ा, नूरानी और बाहदफ रोज़े बनने लगेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं।